اور پند و نصائح سے ہم سب کو مستفیض فرمائے.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنها نصف العلم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. وہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لاکھ کرے، وہ فتنہ و شر کے پروردہ تخریب کا سامان لاکھ کرے. ہم بزم سجانے آئے ہیں، بزم سجا کر دم لیں گے. ہم بزم سجانے آئے ہیں، بزم سجا کر دم لیں گے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اس وقت تین باتیں مجھے آپ سے کرنی ہیں. ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے، مسلم پرسنل لا، فیملی لا، آئلی قانون، خاندانی قاعدہ قانون کے بارے میں بہت سارے مسئلے ہیں. اس میں سے ایک مسئلہ مسلم پرسنل لا کا بہت امپورٹنٹ، بہت اہم، وہ میراث اور وارثہ بیچنی کا مسئلہ ہے. پہلے اس پر میں چند گزارشات آپ سے کروں گا. پھر دوسرے نمبر پر مسلم پرسنل لا اور مسلم پرسنل لا بورڈ کیا چیز ہے، اس پر چند منٹ آپ سے عرض کروں گا. اور اس مجلس کے اختتام پر ابھی کے حالات میں ہم کو کون کون سے ضروری کام کرنے ہیں، اس پر چند منٹ بات کروں گا. میں کھڑا اس لیے رہتا ہوں کہ اس میں بہت سے فائدے اور حکمت ہے. ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم تھک گئے، پھر بھی بیان چالو ہی چالو ہے. تو میں اس لیے کھڑا رہتا ہوں تاکہ آپ اطمینان سے بیٹھ کے سنیں. تھکوں گا تو میں پہلے تھکوں گا. حضرات، مسلم پرسنل لا یہ چند مسئلے کا نام ہے، یہ کوئی راجکارن کی بات نہیں ہے. اور اس میں بھی چند مسئلے سرکار کی پریبھاشا میں، سرکاری اصطلاح میں چند مسئلے. باقی حقیقت بات یہ ہے کہ مکمل شریعت کا نام ہے مسلم پرسنل لا. پورے دین کو کہتے ہیں مسلم پرسنل لا، اور اس کے لیے شاید یہ لفظ بھی مناسب نہیں ہے कि हम उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहे, इसलिए कि पर्सनल का शब्द खानगी और व्यक्तिगत के माने में आता है, जबकि हमारी शरीयत, हमारा दीन इंसान को खानगी जिंदगी में भी रहबरी करता है, फैमिली और कुटुंब और खानदान की जिंदगी में भी रहबरी करता है, कारोबार, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, मस्जिद, हर चीज के अंदर हमारा दीन हमको रास्ता बतलाता है। इसीलिए हकीकत में तो मुकम्मल शरीयत ये है हमारा लॉ, कानून और इस्लाम का कायदा। अब उसमें एक बहुत अहम मसला है वारसा बेचने का। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे देश में चल रहा है, उसका एक फायदा मैं आपको बतलाऊं, बहुत से फायदे कानूनी तौर पर। अगर कोई मुसलमान का वारसा वेंचणी का कोई केस कोर्ट में जाता है तो वो दीवानी कोर्ट में जाएगा, तो दीवानी कोर्ट के अंदर जब वारसा वेंचणी का केस जाएगा, कोई औरत जावे कोई मर्द जावे, तो जज साहब ये कहेंगे कि तुम्हारे किसी सर्टिफाइड बड़े मदरसे के किसी मुफ्ती साहब के पास ये वारसा वेंचणी का मसला गिनवा करके ले आओ और कोर्ट में उसको रजू करो, तो हम उसके मुताबिक ऑर्डर करेंगे, उसके मुताबिक फैसला करेंगे। ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ जो हमारे संविधान ने, बंधारण ने, दस्तूर ने हमको दिया, उसका एक कैश और नकद फायदा है। इसलिए कि अदालत में, कोर्ट के अंदर जो कानून है, उस कानून के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो सही माने के अंदर हरेक को उनका हक दिलवा नहीं सकते। इसीलिए आज भी अगर किसी मुसलमान का वारसा वेंचणी का केस कोर्ट में जाएगा तो वो जज की जवाबदारी बनती है कि वो हमारा जो वारसा वेंचणी का कानून है उस कानून के मुताबिक ही ऑर्डर करे। अगर कोई जज हमारे वारसा वेंचणी के कानून के मुताबिक ऑर्डर नहीं करता तो वो भारत देश के बंधारण, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध कर रहा है और हम उसके खिलाफ उपली कोर्ट के अंदर जाकर के अर्जी कर सकते हैं और उसके फैसले को हम बदलवा सकते हैं, रद्द करवा सकते हैं। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का बहुत बड़ा फायदा है। अब मैं आपको वारसा वेंचणी के मुतालिक चंद बातें अर्ज करूं। पहली बात ये जहन के अंदर रखो कि वारसा वेंचणी के जो कायदे कानून हैं, वो भी हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक बहुत अहम, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसमें होता ये है कि बाप के मरने के बाद या किसी इंसान के, मर्द या औरत के मरने के बाद, मरते वक्त उसने जो माल छोड़ा है, माल दो तरह का होता है, एक मूवेबल एक अनमूवेबल, यानी जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अशियाए मनकूला, या जिसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, अनमूवेबल, अशियाए गैर मनकोला। दोनों किस्म की चीजों के अंदर वारसा वेंचणी का मुस्लिम पर्सनल लॉ फरजियात चलता है। जैसे अनमूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है, मकान है, जमीन है, खेती की हो या ये कि नॉन एग्रीकल्चर जिसको हम एने की जमीन कहते हैं, हर एक के अंदर वारसा वेचणी का मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेगा। और जो मूवेबल यानी जिसका स्थानांतर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसी जितनी भी चीजें जैसे कि मकान के बर्तन, जवेरात, कैश, रोकड़, कपड़े, सर सामान, हर एक के अंदर वारसा वेचनी मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून के मुताबिक फर्जियात होती है। और ये वारसा वेचनी का जो कायदा है वो मरने के बाद का है, जिंदगी में नहीं है। आज कुछ लड़के ऐसे हैं कि बाप को ऐसा कहते हैं जिंदगी में, अभी तो बाप जिंदा है, और कहते हैं मुझे मेरा हिस्सा दे दो मैं अलग हो जाता हूं, मुझे मेरा हक दे दो मैं अलग हो जाता हूं। तो कोई भी लड़का या कोई भी लड़की हमारे वारसा वेचनी का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से बाप की जिंदगी में हिस्सा मांग नहीं सकता। वारसा वेचनी का ताल्लुक मरने के बाद है। जिंदगी के अंदर अगर कोई बाप अपनी औलाद को कुछ देता है तो उसको हदिया कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, भेंट सौगात कहते हैं। और वारसा वेचनी जो होती है वो मरने के बाद हुआ करती है। इसीलिए ये पॉइंट खास ध्यान में रखना कि कोई बेटा, कोई बेटी, कोई वारसदार मुस्लिम पर्सनल लॉ के कानून के हिसाब से जिंदगी में जीवते जीव वारसा मांग नहीं सकता। वो मांगेगा तो बहुत बड़ा गलती करने वाला है। फिर दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट समझो, जब किसी का इंतकाल हो जाए तो इंतकाल होते ही उसका जितना भी माल है वो अब मरने वाले का नहीं रहा, मरते ही वो वारसदारों का हो जाता है। मरने के साथ फौरन वारसदारों का हो गया। उसके ऊपर मैं आपको दो तीन मिसाल समझाने के लिए बतलाता हूं। एक अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल का वक्त करीब था, उनके दोस्त तो उनको मिलने के लिए गए। वहां पुराने जमाने की बात, चिराग जल रहा था, दीवा जल रहा था। ये दोस्त अपने दोस्त को मिलने आए, उनकी आखिरी हालत चल रही थी। कुछ देर के अंदर मौत का वक्त आ गया, वो बीमार बुजुर्ग का इंतकाल हो गया। तो जो खबर लेने के लिए आए हुए थे उन्होंने वहां जो दीवा जल रहा था चिराग उसको बुझा दिया, और बुझा करके कहने लगे अभी तक मेरे दोस्त जिंदा थे, ये घर उनका, ये दीवा भी उनका, लेकिन अब उनका इंतकाल हो गया, इसीलिए अब ये पूरा घर और ये दीवा और उसमें जलने वाला तेल उनका नहीं रहा, अब उनके वारसदारों का हो गया। और वारसदारों की परमिशन के बगैर मैं चिराग और दीवा जला नहीं सकता, इसीलिए उन्होंने फौरन दीवा बुझा दिया। इससे अंदाजा लगाओ कि वारसा वेचनी के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ कितना अहम है कि इंसान के मरते ही दीवे और चिराग पर से भी उसका हक खत्म हो जाता है और अब वो वारसदारों का हो जाता है। इसकी एक दूसरी मिसाल में दो, आपके पड़ोस के एक गांव का फॉरेन का वाकया है, इंडिया के बाहर का। बड़े आदमी थे, दीनी बहनें सुन रही है उनको खास सुनाना चाहता हूं ये वाकया। एक बड़े आदमी दीन के काम के दावत और तबलीग के जिम्मेदार, उनका इंतकाल हो गया। तो उनकी बीवी औरत बहुत नेक और दीनदार, उसने पहला काम किया क्या, घर के फ्रीज के ऊपर ताला लगाया और फिर 3 दिन तक अपने जेब के पैसे से एक कैटरिंग वाले को खाने का ऑर्डर दिया और 3 दिन तक तैयार खाना मंगवा कर सगी मां ने अपने पैसे से अपनी औलाद को खिलाया। चौथा दिन आया, सब लड़के लड़की को बिठाया और बिठा करके कहा, देखो मेरी इद्दत तो 4 महीने 10 दिन तक चलेगी, लेकिन 3 दिन हो गए और हदीस के अंदर मरने वाले पर सोग मनाना तुम सब के लिए सिर्फ 3 दिन तक जायज है, चौथे दिन नहीं। लिहाजा तुम सब बैठो, ये तुम्हारे मरहूम बाप की प्रॉपर्टी, ये पैसे अभी के अभी तकसीम करो, आज शाम हो जावे रात हो जाए तकसीम के बगैर मैं तुमको उठने नहीं दूंगी। कैसी मां होगी वो। फिर उसने अपनी दीनदारी बताई कि तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ, मैंने फ्रिज पे ताला मार दिया। क्यों? कि जब तक तुम्हारे अब्बा जिंदा थे घर में खाने पीने की जितनी चीज है वो तुम्हारे बाप की थी, और इंतकाल हो गया सब वारसदारों की हो गई, और सबके हिस्से में से मैंने खिलाना भी पसंद नहीं किया, इसीलिए मैंने अपने पैसे से 3 दिन खिलाया है, और अब तुम इसी वक्त बैठ करके वारसा वेंचनी करो। ये बिल्कुल इस्लामी मुस्लिम पर्सनल लॉ का वारसा वेंचनी का कानून उसी को कहते हैं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं बुजुर्गों, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला कोई जज्बात का नहीं है, ये तो समझ करके जिंदगी में अमल लाने का मसला है। आज अक्सर मुसलमान इसकी हकीकत को समझ ही नहीं रहे, इसीलिए मैं आपको डिटेल में ये पॉइंट समझा रहा हूं। अब ये औरत कितनी नेक और दीनदार निकली कि उसने 3 ही दिन में पूरे वारसे की तकसीम करवा दी। अब उसका फायदा क्या हुआ? हर एक को उनका हिस्सा मिल गया, सब जोड़ मोहब्बत से रहते हैं और आराम से अपना अपना वारसा वो इस्तेमाल करते हैं। अब जनरली अपने यहां बाप के मरे हुए 10 साल 20 साल 50 साल निकल गए, लेकिन जॉइंट प्रॉपर्टी रखते हैं, वेचड़ी नहीं करते, जिसके हाथ में जो आया वो लेके बैठा है और खा रहा है। झगड़ा अंदर अंदर बढ़ता है और फिर इतना खतरनाक झगड़ा होता है कि भाई भाई का मुंह देखता नहीं, बहन भाई का मुंह नहीं देखती और भाई बहन का मुंह देखने तैयार नहीं, और इतने फितने होते हैं बाद में चलकर के अल्लाह की पनाह। इसलिए कान खोल के सुन लो, आज की इस मजलिस का ये सबक लेकर के उठो, किसी का भी इंतकाल हो जाए पहली फुर्सत के अंदर उसकी वारसा वेंचनी कर डालने की। लोग क्या कहते हैं कि हम तो जोड़ मोहब्बत में मानते हैं कि सब साथ में चलने दो, इसमें जोड़ मोहब्बत रहेगा। मैं सवाल करता हूं मेरे दीनी भाइयों, क्या जोड़ मोहब्बत हमारी अकल से आएगा या अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से आएगा? अल्लाह का हुक्म ये कि जैसे ही किसी का इंतकाल हो जाए फौरन वारसा वेचड़ी कर दो, उसी में जोड़ मोहब्बत है, और सब साथ में रखो साथ में रखो। उसमें जोड़ मोहब्बत नहीं है, दुश्मनावट है, बैर है, बुग्ज है। तीसरी एक बात सुनो, एक आदमी का इंतकाल हो गया तो एक शोहर ने अपनी बीवी को ऐसा कहा था, तो तेरे बाप के यहां गई तो तुझे तलाक है, ऐसा कहा था। अब वो औरत के बाप का इंतकाल हो गया, अब कौन लड़की ऐसी हो कि जो बाप के जनाजे में नहीं जावे, लेकिन जनाजे में जावे तो खतरा इधर तलाक की तलवार लटक रही है। और मेरे मुसलमान भाइयों समझ लो, इस तरह अलटप तलाक मत बोला करो, ये बहुत बड़ा गुनाह का काम है। इस तरह जो है बिला वजह छोटी छोटी बातों में तलाक तलाक की बातें हम लोग बोल देते हैं। अब कोई बात है कि इस तरह लड़की को कह देवे, बीवी को कह देवे कि तू तेरे बाप के घर गई तो तुझे तलाक, कितनी खराब बात है। हफ्ते में कम से कम एक मर्तबा तो माँ बाप को मिल सकती है औरत। अगर शोहर यूं कहे कि तेरे माँ बाप मेरे घर में नहीं आ सकते, औरत बाहर जाकर के अपने माँ बाप को मिलेगी, मिलने की इजाजत है उसके लिए अपने माँ बाप को मिलना। लेकिन इस गांडे ने पागल ने इस तरह की बातें लोग बोल डालते हैं, कहा कि तू तेरे बाप के घर गई तो तलाक। अब बाप मर गया, अब लड़की के लिए दो तरफ, इधर बाप का जनाजा है, दूसरी तरफ शोहर ने ये कहा है कि बाप के यहां गई तो तलाक। तो उस जमाने के अंदर एक बहुत बड़े आलिम दीन ने फतवा दिया, इस औरत को कहो कि जा तेरे बाप के जनाजे में जा, मुंह देख बैठ तेरे बाप के पास, तेरी तलाक नहीं पड़ेगी। सब लोग हैरान कि शोहर ने तो कहा था कि तेरे बाप के घर गई तो तलाक, और ये मौली साहब ये कह रहे हैं कि जाओ बाप के घर जाओ फिर भी तलाक नहीं पड़ेगी, ऐसा कैसा? तो उस मौलाना साहब ने फतवा दिया कि जब तक इसका बाप जिंदा था उस बाप का घर था, बाप मर गया तो अब वो घर बाप का नहीं रहा, अब तो वारसदारों का हो गया। इसलिए लड़की जो वो घर में जाएगी बाप के घर में नहीं जाएगी, वो तो अपने ही वारसे के हिस्से वाले घर में जाएगी, इसलिए इस लड़की को तलाक नहीं पड़ेगी। ये समझो इस्लामी पर्सनल लॉ कितना इंपॉर्टेंट, कितना बारीक है। किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके माल में से पहले कफन दफन करने का, और अपने इंडिया में अल्लाह का बहुत शुक्र है जनरली कब्र मुफ्त में मिलती है, पैसे अपने को देने नहीं पड़ते, वरना यहां से बाहर जो निकले तो कब्र भी महंगी पड़ेगी, 2000 पाउंड, 3000 पाउंड, 4000 पाउंड की कब्र मिलती है। इसीलिए बहुत से लोग बेचारे के पास एक साथ पैसे नहीं होते तो वहां कब्र में भी हफ्तेवारी स्कीम चलती है, अपनी यहां गाड़ी हफ्ते पर मिलती है तो वहां कब्र भी हफ्ते पर मिलती है बेरून के मुल्कों में, कि इतनी महंगी कब्र है कि हफ्ते की स्कीम के 10-10 पाउंड 10-10 डॉलर जमा कराओ पूरी कब्र की कीमत जमा होवे वहां तक। तो अपने यहां तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ इतने ज्यादा है कि कब्रस्तान के अंदर कब्र फ्री में होती है, लेकिन मरने वाले का कफन का दफन का जो खर्चा होए उसमें खिलाने का खर्चा नहीं आता। याद रखना कि मरने वाले के ऊपर जो भाती खिलाते हैं, जियारत का खिलाते हैं, फातिये का खिलाते हैं, वो खर्चा उसमें नहीं आएगा, कफन दफन का खर्चा आएगा, वो उसके माल में से निकालने का। फिर मरने वाले का कोई कर्ज होवे तो वो कर्ज चुकाने का, लोग क्या करते हैं कि मरहूम का कर्जा नहीं चुकाते, ये बहुत बड़ी गलती है, उसके माल में से कर्जा चुकाओ और कर्जा चुका करके फिर आगे चलो। उसके बाद तीसरा मरहला आता है वसीयत का, ये भी मुस्लिम पर्सनल लॉ समझो। वसीयत के बारे में क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, वसीयत मरने वाले ने अगर की है तो एक तृतीयांश में, 1/3 में, 1/3 में वसीयत चलेगी, उससे ज्यादा वसीयत चलेगी नहीं। ये वसीयत का इंपॉर्टेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि वसीयत सिर्फ 1/3 में, 1/3 में, 1/3 में चलेगी, उससे ज्यादा में चलेगी नहीं। अब कोई मरते मरते बेटों ने जिंदगी के आखिरी दिनों में खिदमत नहीं की तो बुड्ढा मरते मरते सोचे कि इन सबको मैं सजा करके मरूं, तो मरते मरते बोलता है कि मेरी जितनी जमीन है, जितने मकान है, जितने पैसे हैं, सब मदरसा मिफ्ताहुल उलूम में वक्फ है। तो वक्फ नहीं चलेगी, सिर्फ 1/3 में चलेगी, इससे ज्यादा नहीं चलेगी वसीयत। दूसरी बात समझो, वसीयत का एक बहुत इंपॉर्टेंट मुस्लिम पर्सनल लॉ समझो, जिसकी वजह से आज हमारे गांव गांव के घर घर में झगड़े हैं। कानून मालूम नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ हम जानते नहीं, इसलिए वो क्या है, हज्जतुल विदा में जब जिंदगी का आखिरी हज हुजूर ने किया तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
उस हज के अंदर जो बयान किया था उस बयान में हुजूर ने ऐलान फरमाया था, अलाला वसीयत अली वारिस, अलाला वसीयत अली वारिस, यानी जो शरीयत के कानून में, कुरान के कानून में वारसदार बनते हैं उन वारसदारों के लिए वसीयत करना जायज नहीं है। जरा समझो इस मसले को, यह है मुस्लिम पर्सनल लॉ का इंपॉर्टेंट कानून कि जो वारसदार बनते उन वारसदारों के हक में वसीयत जायज नहीं। अब देखो वारसदार में है ना, जविल फुरूज है, असबात है, जविल अरहाम है। अब जविल फुरूज किसको कहते हैं? ऐसे रिश्तेदार को कहते हैं, मरने वाले के ऐसे रिश्तेदार कि जिनको वारसा मिलेगा ही मिलेगा, हर हाल में मिलेगा, कोई उनको वारसा देने लेने से महरूम नहीं कर सकता, उनको जो है जविल फुरूस कहा जाता है। खुसूसी हकदार, खुसूसी हिस्सा लेने वाले, जिनका हिस्सा अल्लाह ने कुरान में मुतायन कर दिया कि जिनको कोई रोक ही नहीं सकता, इसको कहा जाता है जविल फुरूस। उन जविल फुरूस के अंदर 17 हालतें औरतों की है और 6 हालतें मर्दों की है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हम लोग इस्लामी लॉ को जानते नहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसीलिए लोग यूं कह रहे हैं कि मुसलमान औरतों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं। मैं तो उनके मजमे में जाकर के बोलता हूं कि मुसलमान औरतों पर जुल्म अत्याचार कौन सा, ये मजहब है इस्लाम कि जिसमें औरतों को 17 हालत के अंदर जविल फुरूस बनाया गया और उनको मीरास में हिस्सा दिया गया, बाकायदा वो औरत ना केवे तो भी मिलेगा, और मर्द की तो सिर्फ 6 हालत आती है मीरास लेने की। तो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ ने 17 सूरत में औरतों को मीरास दिलवाई जविल फुरूज होने की हैसियत से, इसमें छुट्टी हो ही नहीं सकती किसी को। और याद रखना, 3 औरतें ऐसी है कि जिनको किस हर हाल में मीरास मिलेगी। एक मरने वाले की मां अगर जिंदा हो तो उसको मीरास का हक लेने से, वारसे का हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। कान खोल के सुन लो मुसलमान भाइयों, अब्बा के मरने के बाद मां का हिस्सा भी फरजियात है। कोई बेटा यूं कहे, मां तो हमारे साथ घर में रहते, मां की तो हम खिदमत सेवा चाकरी करते, मां का हिस्सा काई को देने का, तो बहुत बड़ी गलती में है। तू अगर तेरी मां की खिदमत करता है तो बेटा होने के नाते से खिदमत करता है, सवाब लेने के लिए खिदमत करता है, अल्लाह को खुश करने के लिए खिदमत करता है, लेकिन मां को वारसे का हिस्सा अलग से देना पड़ेगा, नहीं देगा गुनहगार बनेगा। दूसरी औरत जिसको हर हाल के अंदर हिस्सा मिलेगा वो है बेटी। बेटी को हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा मरने वाले की। और बहुत से भाई क्या करते हैं कि बहन को तो अब्बा ने शादी के वक्त के ऊपर इतना सोना चढ़ा दिया था, इसीलिए बहन को वारसे में हिस्सा नहीं देना है। बहन ससुराल गई थी तो इतना सारा माल, इतने शहर अब्बा ने दिए थे, इसीलिए बहन को वारसा नहीं देने का। वो भाई जालिम है जो बहनों के साथ ऐसा बर्ताव करे। और बहुत से भाई एक दूसरी गलती करते, क्या बहन के पास जाएंगे, बहन वारसों माफ कर ही देंगे, बहन वारसों माफ कर ही देंगे। बहुत से होंगे तो कहा सही करवा लाएंगे, पहले से लिखवा के लेके जाएंगे, बहन जाकर सही कर ही देंगे। ये मुफ्तियां ने किराम बैठे, पूछ लो जो प्रॉपर्टी, जमीन, खेती, मकान जो तकसीम हो सकती है, ऐसी प्रॉपर्टियों में अगर बहन का हिस्सा बताए बगैर मुजमलन माफी मांग लोगे, लिखवा लोगे, कान खोल के सुन लो, माफ नहीं होगा, माफ नहीं होगा, माफ नहीं होगा। बैन का हिस्सा बाकी ही रहेगा। ये शरीयत का, ये है मुस्लिम पर्सनल लॉ। ये कोई जज्बात की बातें नहीं, ये तो समझ के अपनाने की चीजें है मुस्लिम पर्सनल लॉ। तो आज हम मुसलमान ही नहीं जानते तो फिर गैरों के सामने लड़ाई क्या लड़ेंगे। मसला ये है असल। तो तीसरी औरत बीवी है मरने वाले की, मरने वाले की बीवी को भी हर हाल में हिस्सा मिलेगा मरने वाले के इसमें से, उसको भी ज़ौरुल फुरूज कहा जाता है। ये तीन औरतें हो गई जिनको कंपलसरी, और तीन मर्द है जिनको मरने वाले की माल में से हिस्सा मिलेगा, बाप को, शोहर को और बेटे को। ये तीन को कोई महरूम नहीं कर सकता। मां मर गई तो उस मरने वाली औरत का बाप, मरने वाली औरत का बेटा और मरने वाली औरत का शोहर, ये तीनों ज़विल फुरूज बनते और उनको भी मीरास के अंदर हिस्सा दिया जाएगा। तो जिनके लिए कुरान में हिस्सा बयान किया गया वो ज़विल फुरूज, उनको वारसे में हिस्सा मिलता है, इसीलिए उनके लिए वसीयत जायज नहीं है। ये हुजूर ने ऐलान किया। अब झगड़े कहां खड़े होते हैं? एक भाई ये कहेगा, बावा मरा हरु आ खेतर नो के गेला, बावा मने आ घर लखीने दे गेला, बावा मरा हरु आ के गेला, आ साक्षी, साक्षी नहीं तो मैं हमड़े लो। बस ये है फितने की जड़। तो कान खोल के सुन लो, अगर अब्बा जान कह गए, दो गवाह की हाजिरी में कह गए, लिखान दे गए, उसको चूल्हे में जला देना, वो काम नहीं आएगा। वो रद्द बातल बोल गए वो भी रद्द बातल, गवाहों ने सुना वो भी रद्द बातल, लिख के दे गए वो भी रद्द बातल। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वारसा वेचनी का जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बतलाया वो ये है कि ला वसीयत लिवारिसिन, वारसदार के लिए कोई वसीयत नहीं। अब झगड़े यही हो रहे हैं, अब्बा मेरे लिए ये कह गए थे, मुझे ये देने के लिए कह गए थे, मेरे लिए लिखान कर गए थे, तो ये चीज मोतबर है ही नहीं। उसमें तमाम वरसा की रजामंदी हो तो कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन वरसा रजामंद होते तो झगड़ा ही थोड़ा होता। झगड़ा होना अलामत है कि सब रजामंद नहीं है। इसलिए एक इंपॉर्टेंट कानून समझो मुस्लिम पर्सनल लॉ वारसा वेचनी का, कि जो हिस्सेदार है उनके लिए वसीयत जायज नहीं, पारकों के लिए वसीयत जायज है, वो भी 1/3 के अंदर, एक सुलस में। आगे बात समझो, शरीयत ने जो वारसा वेचनी का कानून बतलाया वो कानून इतना अच्छा बतलाया है कि उसमें लोगों का फायदा है। इतने ज्यादा रिश्तेदार को भी नहीं दिलवाया कि सबको कब्र जितनी जमीन भी नहीं मिले। अगर यूं कहा जाता कि सब रिश्तेदारों में वारसा वेचनी करो तो एक जमीन में किसी को कब्र जितनी जगह भी न मिले। हमारी यहां एक प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, तो मुझे उनके वारसदारों ने जिम्मेदारी सौंपी थी, तो मैं वारसाई की तहकीक करने निकला। कई दिन तो लगे वारसाई की तहकीक में। तहकीक मैंने की तो हमारी यहां पौना ओरवाड़ महल्ला उसमें वारसदार बनता था, पौना ओरवाड़ महल्ला वारसदार बनता था। फिर एक दिन मैं तहकीक के लिए बुड्ढों के पास घूम रहा था तो एक मरहूम हो गए, एक बूढ़े मियाँ, उस दिन ईशा में मुझे मिले। मुफ्ती साहब पहले तो मैं बधु खबर काढ़ता से ने, तो मने भी जरा पूछो, अमारो भी लागतो छे, इमा मारा पास आखी हिस्ट्री छे कि अमारू भी इमा लागतो छे। तो मैंने कहा आप तो जो थोड़ा हिस्सा बाकी था वो भी पूरा हो गया, मुकम्मल ओरवाड़ का इसमें लगने वाला है। अब जो हम तकसीम करने बैठेंगे तो वो जमीन को कब्रिस्तान ही बनाना पड़ेगा, इसके बगैर तो कोई चारा है ही नहीं कि भाई सबको कहो वहां दफन हो, यही इसका आखिरी रास्ता है। खैर, तो शरीयत ने वारसा वेचनी ऐसी भी नहीं रखी कि सब रिश्तेदारों को मिले, दूर के भी, वो भी वो भी। उनको तो सिर्फ अपने शादी और मैयत के वक्त थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं, कि इनके साथ ये सगाई, इनके साथ ये सगाई, मौत मैयत में इत्तिला और शादी के अंदर इत्तिला, बस उसके आगे वारसाई में नहीं। वारसाई में तो एकदम क्लोज अल अकरबून, जो करीब के रिश्तेदार है उनको ही वारसा वेचड़ी का हिस्सा मिलेगा। दूसरी बात, शरीयत ये चाहती है कि माल का रोलिंग होवे, रोटेशन होवे, माल चलता रहे, एक जगह माल रुक नहीं जावे। आप जानते हो कि कितना ही अच्छा पानी होवे लेकिन एक जगह जमा होगा तो आज नहीं तो कल वो पानी में सड़ान आएगी, बदबू आ जाएगी, उसमें कचरा आ जाएगा, लील आ जाएगी। और पानी चलता रहे, थोड़ा चले तो भी वो साफ सुथरा रहेगा, ज्यादा पानी एक जगह रुके बदबूदार हो जाएगा, और कम पानी चलता रहे अच्छा रहेगा। शरीयत ये चाहती है कि माल एक जगह रुक नहीं जावे, वो चले ताकि साफ सुथरा रहे, बरकत वाला रहे। इसलिए शरीयत ने वारसा वेचनी रखी कि मरने वाले के पास था, अब उसकी औलाद के पास, फिर उसकी औलाद के पास, ये रनिंग चालू रहे, दौड़ चालू रहे, और माल के अंदर बरकत रहे, और माल के अंदर गंदगी मैल और कुचेल नहीं आवे। इसीलिए आप देख लो इस बात को, जहां वारसा वेचनी नहीं होती और माल एक ही जगह रहता है, वहां बदबू और गंदगी माल में पैदा हो जाती है। आप देख लो दुनिया में कि सब वारसदार फिर ऐसे लड़ेंगे झगड़ेंगे कि प्रॉपर्टी आगे चलती नहीं, न ये बेच सकता है न वो खरीद सकता है, न इसको फायदा न उसको फायदा। इसीलिए शरीयत ने ऐसी उसकी तकसीम रखी कि माल आगे चलता रहे। दूसरी एक बात समझो, मुस्लिम पर्सनल लॉ वारसा वेचड़ी में, मिम्मा कल मिनहु औ कसुर, कि मरने वाले का माल थोड़ा हो के ज्यादा, हरेक को तकसीम करना है, हरेक की वेचनी करनी है। एक चीज भी कोई एक औलाद जबरदस्ती अपने पास रख सकता नहीं है, एक चीज भी अपने पास छुपा के रख ली या धोखा देकर रख ली तो कल कयामत के दिन उसका हिसाब देना पड़ेगा। अब इसमें एक बात है जो कुरान का कानून है, युसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। बहुत सी हालत में मर्द को डबल मिलता है, औरत को सिंगल मिलता है, एक कानून ये। लेकिन ये भी याद रखना, बाज हालात में इक्वल बराबर बराबर मिलता है मर्द को भी और औरत को भी, और बाज हालात तो ऐसे औरतों को ज्यादा मिलेगा मर्द को कम मिलेगा, ऐसे भी हालात है। तीनों तरह के हालात है, मर्द को डबल औरत को सिंगल, मर्द औरत का बराबर बराबर, या औरत को ज्यादा मर्द को कम, हर तरह के हालात है वारसा वेचड़ी के। लेकिन ज्यादातर किया है मर्द को डबल औरत को सिंगल, जैसे भाई और बहन हो तो भाई का डबल बहन का सिंगल। बाज लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ऐसा कैसा बहन को आधा और भाई का डबल। ये सवाल वो लोग करते हैं जो बहन को बिल्कुल नहीं देते, ऐसे लोग सवाल करते हैं। आज भी बहुत से मजहब धर्म दुनिया में ऐसे हैं कि इसमें औरतों के लिए कोई हिस्सा ही नहीं है, मरने वाली की बेटी का बीवी का कोई हिस्सा कानूनी तौर पर नहीं है। वही लोग सवाल उठाते हैं कि भाई ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर औरत को आधा और लड़कों को डबल ऐसा क्यों। हम इनको समझाते हैं कि देखो मर्द की जवाबदारी ज्यादा इसलिए उसको माल भी ज्यादा, औरत की जवाबदारी कम इसलिए जो है औरत को हिस्सा भी कम। आप जानते हो ना कि एक मर्द को कितनी सारी जिम्मेदारी निभानी होती है। पहली जिम्मेदारी खुद अपना खर्चा, मर्द का अपना खर्चा पूरा करना। दूसरी जिम्मेदारी अपने बीवी बच्चों का खर्चा। तीसरी जिम्मेदारी बूढ़े मां बाप का खर्चा, चौथी जवाबदारी खानदान में कोई माजूर हो तो उसका खर्चा, इतनी सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर आई। तो फिर मर्द को अगर ज्यादा देवे और औरत को कम देवे, इसमें कौन सा कसूर हो गया? मर्द की इतनी सारी जवाबदारी, इतने सारे खर्चे उसको उठाने के, इसलिए मर्द को भाई को डबल, बहन को सिंगल। अब एक बात और समझो इसके अंदर, अगर कोई औरत मालदार है और वो मालदार औरत अपना खर्चा खुद चला सकती है, लेकिन वो केवे अपने शौहर को, मेरा खर्चा मुझे चाहिए हर महीने टाइम टू टाइम, तो शौहर को देना पड़ेगा। बीवी करोड़पति बन जावे, लखपति बन जावे, फिर भी शौहर की जवाबदारी है कि बीवी केवे के नहीं खर्चा लाओ, तो मर्द की जिम्मेदारी है कि खर्चा देना ही पड़ेगा। अब इतना भारी मुस्लिम पर्सनल लॉ है कि बीवी करोड़पति हो जावे तो भी शौहर की जवाबदारी खर्चा देने की है। तो फिर बताओ अगर मर्द को डबल और औरत को सिंगल हिस्सा मिले, इसमें कौन सा कसूर हो गया? दूसरी खास बात ये समझो कि अगर ये औरत कुंवारी है तो बाप के घर में है, बाप खर्चा उठा रहा था, शादी करेगी शौहर खर्चा उठाएगा, और खुदा ना खास्ता तलाक हो गई, तो हमारा मजहब तो इतना अच्छा मजहब है कि तलाक के बाद भी माँ बाप से भाई बहनों से ताल्लुक खत्म थोड़ा ही हो जाता है। तलाक के बाद बाप के पास आ सकती है, बाप खर्चा उठाएगा, भाई उसकी खिदमत करेंगे, इतने सारे आवक के साधन है उस औरत के लिए। इसलिए शरीयत ने यह कहा कि औरत को सिंगल, यानी बेटी को सिंगल और बेटे को डबल हिस्सा, ये बिल्कुल इंसाफ के मुताबिक है। अब आप सोच लो कि एक औरत शादी करके चली गई, बाप मरा वहां से भी हिस्सा, शोहर मरा वहां से भी हिस्सा, और उसके जिम्मे जवाबदारी खर्चे की कोई नहीं, तो इतना सारा माल लेके वो जाएगी कहां? आखिर के अंदर उसको नहरे जुबेदा खुलवानी पड़ेगी, और क्या करेगी वो? नहरे जुबेदा जानते हो ना, उम्रे में जाते हैं, हज में जाते हैं तो जियारत में ले जाते हैं, तो जियारत में अरफात भी ले जाते हैं, तो अरफात में आपको एक नहर की दीवार बतलाते हैं। हमारी दीनी बहनें सुने इस चीज को, मक्का में अरब में पानी नहीं है, ये तो एक जमजम कुदरती चीज है, तो जमजम तो पीने के काम आता है, नहाने धोने सारे काम के लिए पानी मक्का में नहीं है, ये तो इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट दरिया का पानी मीठा करती है मशीनों के जरिए से, बड़े बड़े मशीन है कि जिसमें फिल्टर करके हाजियों को देते, वरना आज तक ये मशीन कहां थे? नहीं थे। तो एक बहुत नेक औरत गुजरी है, खलीफा हारून रशीद की बीवी जुबेदा खातून, उस जुबेदा खातून ने बगदाद से लेकर के मक्का तक अपने पैसे से नहर खुदवाई, और बगदाद से पानी मक्का आता था हाजियों की खिदमत के वास्ते। तो बहनों को इतना सारा हिस्सा मिलेगा, अब्बा मरे वहां से भी मिला, शौहर मरेगा वहां से भी मिला, नहर की रकम भी मिली, इतनी सारी चीजें मिली। तो फिर वो औरत करेगी क्या? जवाबदारी खर्चे की कुछ नहीं, और इतना सारा मिला, अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करे। आपको एक बात बताऊं, हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक्स प्रेसिडेंट है, बहुत बड़े आलिम दीन, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब समान सिविल कोड की बात उठी तो इंदिरा जी से मुलाकात हुई, उस जमाने में इंदिरा गांधी भारत की वड़ा प्रधान थी, तो मुलाकात के वक्त तो उसको समझाया बैठ करके कि देखो हमारी शरीयत के अंदर एक औरत को बाप की मीरास मिलेगी, शोहर मरेगा शोहर की मीरास मिलेगी, बाज हालात में भाई की तरफ से भी हिस्सा मिलेगा, और उस औरत पर खर्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं, जब तक बाप के घर में है कुंवारी है, बाप खर्चा उठावे, शादी करके ससुराल चली गई शोहर खर्चा उठावे, इतने सारे उसके आवक के साधन हैं, ऊपर से मेहर की रकम भी। तो फिर इंदिरा जी खुद बोलने लगी, ओहो हो, इतना सारा मुसलमान औरतों को मिलता है माल का हिस्सा, तो फिर मैं जो है अपने इस फैसले को रिटर्न लेती हूँ कि तलाक के बाद इद्दत गुजरने के बाद उसके खर्चे को कंपलसरी शोहर पर नहीं करना चाहिए। उसने उसी वक्त अपना इरादा मौकूफ कर लिया था। ये हजरत मौलाना अली मियां साहब ने इंदिरा गांधी से जो फेस टू फेस बैठ करके बात हुई थी उसका पूरा किस्सा नकल किया है। तो जो भी अकलमंद होशियार इस्लाम के इस सिस्टम को समझेगा वो कभी ऐसी बात नहीं करेगा कि इद्दत के बाद भी उसको खर्चा मिलना चाहिए। हमारी दीनी बहनों को हम एक बात कहेंगे कि बहनों, अल्लाह ताला ने जो शरीयत दी है उस शरीयत के अंदर तुम्हारे लिए भलाई है, इज्जत है, खैर है, उसी के अंदर दुनिया आखिरत की फलाह और बहबूदी और कामयाबी है। ये बातें हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक जो वारसा वेचनी का जो इम्पोर्टेंट मसला है उसके लिए ये चंद बातें मैंने आपको बतलाई। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वारसा वेचनी इल्म फराइज सीखो, लोगों को सिखलाओ, ये इल्म का आधा हिस्सा है। इसलिए कि जितना इल्म है एक हिस्सा जिंदगी का, एक हिस्सा मरने के बाद का। इसलिए पूरा वारसा वेचनी का जो सिस्टम है ये सिस्टम, ये पूरी एक आधी सिस्टम है शरीयत के कानून और शरीयत के मसले मसाइल के। अब इसकी कुछ बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बताई, ज्यादा डिटेल उसके अंदर आसान बात यह है कि जब किसी के घर के ऊपर किसी का इंतकाल हो जाए फौरन किसी मुफ्ती साहब के पास पहुंच जाओ और उनको कह दो ये पैसे हैं, इतनी जमीन है, इतने बर्तन हैं, इतने जानवर हैं, हम इतने भाई बहन और हमारी अम्मा हैं, बस इतने हिस्सेदार हैं, आप शरीयत के कानून के मुताबिक तकसीम करके दे दो, हम बांट लेंगे और इसी में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे। ये इसका बेहतरीन तरीका कि इंतकाल के बाद किसी आलिम के पास, मुफ्ती साहब के पास बैठ करके शरीयत के कानून के मुताबिक फौरन वारसा वेचनी करा लेने की। और ये तो जो है ना अल्लाह ताला की भी जो है अजीब शान है। जब अपने यहाँ लैंड के लॉ आए, जमीन के कानून, तो मैंने कहा कि ये तो अल्लाह की तरफ से आए हैं। इसीलिए कि अभी तो आपको मालूम है ना कि इतने सख्त कानून हो गए कि एक भी वारसदार को छुपाया तो ये तो नॉन बेलेबल जो है इसके लिए जेल है कि उसको जेल की सजा होती, क्रिमिनल कानून उसके ऊपर लगता है। तो मैं अपनी दीनी बहनों को कहूंगा कि वारसा वेचनी का हिस्सा लो अपना, छोड़ो मत उसको, और लेने के बाद फिर चाहे तो भाई को हदिया दे दो, मस्जिद मदरसे में दे दो, खैरात के काम में दे दो, और ये तुम्हारा शरीय एतबार से भी हक बनता है और आज के कानून के एतबार से भी हक बनता है। अल्लाह सब मुसलमानों को इस वारसा वेचनी वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बहुत अहम और जरूरी चीज है। तमाम भाइयों बहनों नियत कर लो कि शरीयत के कानून के मुताबिक हम लोग वारसा वेचनी कराएंगे। एक बात ये, अब मैं दूसरे टॉपिक पर आता हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कि भाई ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या चीज। हमारी जो शरीयत है, कुरान है, हदीस है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ताला ने कुछ किस्से भी बयान किए पिछले नबियों के, अल्लाह ताला ने कयामत की बातें भी बयान फरमाई, लेकिन कुरान में हदीस में जो लॉ, कायदे, कानून, मसले मसाइल बयान किए गए उसी को कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। कुरान में, हदीस में, इजमा में, कयास में जो कानून, जो मसले मसाइल लॉ बयान किए गए उसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। उसमें सब चीजें आ जाती है। उसमें एक मुसलमान की इबादत के कानून भी आते हैं, माशरत समाजी जिंदगी के कानून भी आते हैं, मामलात तिजारत कारोबार लेन देन के कानून भी आते हैं, अखलाकी जिंदगी के कानून भी आते हैं, जितने भी कानून आते उन सबको कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लामिक शरीई लॉ, शरीयत लॉ, शरीई कानून उसको कहा जाता है। फिर दूसरी चीज, हमारे भारत देश के बंधारण के एतबार से मुस्लिम पर्सनल लॉ किसको कहते हैं? हमारे भारत देश के बंधारण में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का लफ्ज बोला जाएगा, कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का लफ्ज बोला जाएगा, संसद में, पार्लियामेंट में, अदालत में, हुकूमत में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ का लफ्ज बोला जाएगा, तो उसका मीनिंग ये होगा कि खानदान, कुटुंब के मुतालिक 16 या 15 मसले, उन 15-16 मसलों को जिसको भारत के बंधारण ने मान्यता अता फरमाई, उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। कि एक मुसलमान का जो कुटुंबिक झगड़ा होता है, निकाह है, तलाक है, परवरिश है, मीरास है, खुला है, मुबारात है, हिला है, जियार है, इसके जो 15-16 मसले, इस 15-16 मसलों का नाम आज की अदालत बंधारण की जुबान में उसको मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाता है। तो ये दोनों चीज का फर्क अच्छी तरह समझ लो कि हमारी शरीयत के जितने भी कानून हैं, अकाइद, इबादात, मामलात, माशरत, अखलाक, वो है असल मुस्लिम पर्सनल लॉ। और भारत सरकार के बंधारण, देश के बंधारण के एतबार से मुस्लिम पर्सनल लॉ कहा जाएगा जो हमारे कुटुंबिक झगड़ों के मुतालिक, फैमिली मैटर जिसको कहते हैं, उसके मुतालिक जो 15-16 मसले जिसको भारत के बंधारण ने 1937 के अंग्रेजों के बनाए हुए शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, फैमिली लॉ, शरीयत लॉ, उस हिसाब से जिन 15-16 मसलों को मान्यता दी उसको कहा जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब हो रहा है क्या? अब मैं आपको झगड़े की जड़ समझाऊं, वो भी समझ लो। ये जो समान सिविल कोड की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल कोड, तो अकेले मुसलमानों को नहीं लगती, एक बात ये भी समझ लेना, सिर्फ अकेले मुसलमान को नहीं लगती, इस देश में रहने वाले जितने भी धर्म के मानने वाले हैं उन तमाम लोगों को समान सिविल कोड का फितना लगता है, सबको लगेगा। समान सिविल कोड का मतलब क्या? जितने भी धर्म के मानने वाले, सिख हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, कोई भी धर्म का मानने वाला हो, हिंदू हो, उसको अपनी जो प्रणालिका है, अपने जो रीत रिवाज है, अपने जो कायदे कानून है, वो छोड़ करके सरकार जो बनाएगी उस पर अमल करना पड़ेगा, उसको कहा जाता है समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको कहा जाता है। अब ये जो समान सिविल कोड आएगा तो बुद्ध लोगों को अपने मजहब के कानून छोड़ने पड़ेंगे, ईसाइयों को अपने मजहब के कानून छोड़ने पड़ेंगे, हर धर्म वाले को अपने अपने धर्म के कायदे कानून छोड़ देने पड़ेंगे, और सरकार जो बनाए उसके ऊपर चलना पड़ेगा। ये है समान सिविल कोड का मतलब। अब इसमें एक बात समझो, दूसरे मजहब वालों की हकीकत में डिटेल में हम नहीं जाते, हम अपने मजहब की बात करें। आप सब जानते हैं कि हमारे मजहब के जितने भी कायदे और कानून हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए हैं, किसी इंसान के बनाए हुए नहीं, अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं। और देखो, जब कोई कानून बनाना हो तो उसके लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक है इल्म और दूसरा है इंसाफ, जानकारी। अब एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरियात को जानता नहीं कि इसकी जरूरत क्या, तो जब एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरियात को जानता नहीं तो फिर उसको क्या हक पहुंचता है कि वो दूसरे इंसान के लिए कोई कानून बनावे। आपके यहां कोई मेहमान आए, मेहमान को चाय की जरूरत है, लेकिन आप उसके सामने ले जा करके फलूदा रख देवे, तो मेहमान क्या कहेगा? फलूदा है तो बहुत अच्छा, लेकिन मुझे तो चाय की तलब थी। तो एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरत नहीं समझ सकता, तो जरूरत को समझे बगैर कानून कैसे बनावे। और हर इंसान अपनी जरूरत के चक्कर में रहता है, अपने फायदे के चक्कर में रहता है, अपने स्वार्थ के चक्कर में रहता है। तो कोई इंसान किसी इंसान के लिए कानून बनाने का हक नहीं रखता। दूसरी खास बात समझो, कानून बनाने वाले में अदल और इंसाफ होना चाहिए, उसके बगैर कोई आदमी सही कानून नहीं बना सकता। हमारे यहाँ एक बूढ़े मियाँ थे, इंतकाल कर गए वहाँ नवापुर के अंदर। वो बूढ़े मियाँ की बात क्या थी, बेचारे को घर, उन्होंने गांव के जमात ने उनको जवाबदारी दी थी कि मस्जिद के बोर्ड पर आपको हर हफ्ते नई हदीस लिख देने की। उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो सारे रिसाले किताबें पढ़े और उसमें से कोई बात आर्टिकल पढ़ के मस्जिद के बोर्ड पर लिख दे, हर जुमा की शाम को वो बदल डाले। एक मर्तबा, एक महीना, दो महीना, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने कंटिन्यू इस्लाम ना मा, इस्लाम मा माँ बाप ना हक्को विषय जरूरी जानकारी, छह महीने तक टॉपिक ही पूरा नहीं होता, एक के बाद एक वो लाया ही करे। तो एक दिन लोगों ने पूछा कि चाचा आ हूं बोलो माँ बाप ना हक और हट्टू जी नहीं। तो पता चला कि उनके बेटे उनको परेशान करते थे, तो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए पूरे गांव को वो पढ़ा रहे कि भाई माँ बाप ने हक को वाचो। ये इंसान के स्वार्थ का हाल है कि इंसान अपने स्वार्थ की सोचता है। आज यही हो रहा है, हरेक को अपना पेट भरना, जेब भरनी, और हरेक को अपनी नस्लों की जिंदगी भरनी, कोई किसी का फिकर मन नहीं। तो फिर जब इंसान में अदल नहीं, इंसाफ नहीं, तो वो कैसे कानून बनाने का हक रखता है। कानून बनाने के लिए बुनियादी जिम्मेदारी जरूरत इल्म, वो इल्म जो अल्लाह के पास है, वो किसी के पास नहीं हो सकता। इसीलिए कानून बनाने का हक भी अल्लाह को, अल्लाह ने मखलूक बनाई, अपनी मखलूक को अल्लाह जानते, उनकी जरूरियात को जानते, इसीलिए अपने बंदों की मखलूक की जरूरियात को सामने रख करके अल्लाह ने जो कानून बना दिए वो अटल है, वो फेरफार करने की कोई जरूरत नहीं। दुनिया में इंसान की एक खराबी क्या है, अपनी अकल से एक कानून बनाएगा, थोड़े दिन बाद पता चला कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, तो कहा चलो कानून बदलो और नया कानून पास करो। ये इंसान का हाल है, आज एक कानून बनाएगा, थोड़े दिन में वो कानून को बदल डालेगा। ये इंसान की अकल का हाल। बहुत सी जमात की जमात बैठ के एक ठहराव पास करेगी, दो चार बरस के बाद लगा, बाज मरतबा दो महीने में ही लगा, बाज मरतबा दो दिन में लगा, बाज मरतबा तो दो घंटे में लगा कि जमात ने ठहराव पास किया वो सही नहीं बदलो। अब अखी जमात ने ठहराव पास किया वो बदलो, ये तो इंसान की अकल का हाल है। फिर ये इंसान ये कहवे कि अल्लाह के कानून को छोड़ करके हम जो कानून बतलावे उस कानून पर चलो, ये तो इंसान की नादानी और जुनून और पागलपन की बात है। इसीलिए हम सरकार को, हुकूमत को, अदालत को, अदलिया को, सबको यही बात समझाते कि भाई हम मुसलमानों का बस इतना कहना है कि हमारी शरीयत के जो कानून है, हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये जमीन पर नहीं बना, ये आसमान से उतरा हुआ कानून है, और उसको कोई इंसान किसी हाल के अंदर बदल सकता है। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि देखो फौजदारी कानून, क्रिमिनल कानून और दूसरी जितनी भी चीजें मुल्क की, उसमें सब समान है, कोई अलग नहीं। आप किसी का मर्डर करो तो मर्डर के अंदर इस्लामी कानून नहीं चलेगा, वहां कोर्ट का कानून चलेगा। हो सकता है कि मर्डर करने के बाद वो प्रूफ नहीं हो सका, कातिल बिंदास छूट के आ जावे, जैसा कि हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें 90% से ऊपर पूरे मुल्क के हर कानून में समान सिविल कोड है, सिर्फ 8-10% के अंदर ये पर्सनल लॉ है। हिंदुओं का हिंदू लॉ, मुसलमानों का मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, बुद्ध लोगों का बुद्ध पर्सनल लॉ। अब उसके अंदर जो 8-1% बाकी है, उसमें भी ये लोग जो है ये कहते हैं कि नहीं, उसमें भी समान सिविल कोड लाओ। तो ये बात तो कैसे कबूल की जा सकती कि हर मजहब वाला अपने अपने मजहब की जिम्मेदारियों को, मजहब के कानून को छोड़ देवे और जो ये लोग तय करे उसके ऊपर अमल करने वाले बने। इसीलिए ये बात तो कभी हो नहीं सकेगी इंशाअल्लाहुल अजीज। हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं, हर हर मुसलमान, मर्द हो के औरत, सबका ये ईमान और यकीन है कि हमारी शरीयत मुकम्मल है, है कि नहीं बोलो? अरे बोलो पूरे ईमान से कि शरीयत मुकम्मल है कि नहीं? मुकम्मल है, इसमें किसी तरह तब्दीली की जरूरत है? बोलो, अरे जरूरत है तब्दीली की? बिल्कुल नहीं, किसी हाल के अंदर नहीं। और इंशाल्लाह अगर हम इस्लामी शरीयत पर अमल करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे कानून को बदल नहीं सकती, जरूरत इतनी है। मैं आप सबको कहता हूं कि भाई पूरी शरीयत तो बहुत बड़ी चीज, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि भारत सरकार के कायदे के एतबार से ये 15-16 मसले जो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ में आते हैं, उस 15-16 मसलों को आप लोग समझ लो। इतनी मैं अपील करता हूं। जैसे अभी मैंने वारसा वेचनी की हाईलाइट्स बतलाए, बड़ी बड़ी बातें बतलाई, उसूली सिद्धांतिक बातें, इस तरह तलाक है, मेहर है, निकाह है, वारसा वेचनी है, परवरिश है, खुला है, मुबारात है, जिहार है, इन तमाम चीजों के मुतालिक माशाल्लाह आपके यहाँ दारुलूम है, इतने सारे उलमा और मुफ्तियान किराम है, एक एक मजलिस रख कर के उसके कानून समझ लो ताकि हमको पता चले कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के 16 मसले सरकारी कानून के एतबार से क्या क्या आते हैं, उसको सीखने और समझने की जरूरत है। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के उलमा को, नौजवान को, हमारी मुसलमान दीनी बहनों को और आप सबको कि आप शरीयत को समझने के लिए, हमारी शरीयत के कानून को समझने के लिए यहाँ पर जमा हुए। अल्लाह ताला इस कोशिश को, इस मेहनत को, इस जद्दोजहद को बे इंतहा कबूल फरमाए। पता नहीं तराज वालों के इखलास और नीयत की कैसी कैसी बरकतें हैं। जब कच्छ भूज में धरती कंप हुआ था तो उस वक्त के ऊपर धरती कंप से पहले मेरा यहाँ बयान तय हुआ था। धरती कंप हुआ, मैं कच्छ भूज चला गया था काठियावाड़ के इलाके में, वहाँ से आया दोपहर में कई दिनों के सफ़र से, तो मैंने फ़ोन किया कि 6 दिन के सफ़र से थका हुआ हूँ, अगर मैं आज बयान के लिए ना आऊँ? तो कहा नहीं, गामे गाम बॉर्ड लगी गए लाउच पड़े। आया मैं और उस रात को जो यहाँ बयान किया था, आप यकीन मानो उस वक्त सीडी नहीं थी, व्हाट्सअप नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, लेकिन सादी सिंपल कैसेट चलती थी, हजारों कैसेट दुनिया में तराज के बयान की हमारी चली थी, हजारों कैसेट, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और रेडियो इस्लाम अफ्रीका में कितनी जगह पर आया। हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब कापुद रवि दामद बरकात हमने बाकायदा कनाडा से मुबारकबादी का खत लिखा था उस बयान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि आप तराज वालों के इखलास की वो बरकत थी जो जलजले की कारगुजारी मैंने यहाँ सुनाई थी और दुनिया में हजारों की तादाद में वो पहुंच गई थी। तो ये जो इस्लामिक पर्सनल लॉ की बुनियादी बातें मैंने आपको समझाई वो बहुत अहम और ज़रूरी है। मजलिस के इख्तिताम पर आज के हालात में 2-3 खास नसीहत करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर आपको कहूँ, ये जो बात कह रहा हूँ मुझे किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं कहा है, खुदा गवाह। बस आजकल के हालात जो सामने हैं, दिल में आता है कि मैं हर जगह मुसलमानों को ये बात बताऊं। पहली बात, बहुत अहमियत से आप लोग इसको लें भाइयों, हमारे यहाँ जितनी मस्जिदें हैं, जितने मदरसे हैं, जितने कब्रस्तान हैं, उसका फरजियात रजिस्ट्रेशन करवाओ। पहली बात समझ लो, बहुत अहम बात कह रहा हूं मैं, आप लोगों को मामूली मत समझना। बहुत सी बातें हम स्टेज पर नहीं कह सकते आपको, क्योंकि हम लोगों के बयान सेकंडों में कहां कहां जाते हैं हम जानते हैं। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं, समझ लो मेरी इन इशारों को। मस्जिद, मदरसे, इबादत खाने, कब्रस्तान, ये जितनी भी इस तरह की प्रॉपर्टियां हैं, उसका सरकार में फरजियात पहली फुर्सत में रजिस्ट्रेशन करवाओ वक्फ बोर्ड के अंदर। एक मेरी अपील आप लोगों से बहुत दर्द से, अगर आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो हर बस्ती के ट्रस्टी मुतवल्ली कमेटी वाले मेहनत करके दौड़ धूप करके जो है रजिस्ट्रेशन फरजियात करवा ले। उसी में दूसरी खास बात के बंधारण जो बनता है मस्जिद का, जमात का, कमेटी का, मदरसे का, कब्रस्तान का, उस बंधारण के मुताबिक बंधारण में जितनी मीटिंग लिखी हो साल में इतनी मीटिंग चौपड़े पर बताने की, और हर अपने इदारे का बैंक में अकाउंट हो, मस्जिद का भी अकाउंट, मदरसे का भी अकाउंट, कब्रस्तान का भी अकाउंट, बैंक में अकाउंट हो और ट्रस्ट के नाम का अकाउंट हो, किसी के प्राइवेट नाम का नहीं, ये भी बहुत जरूरी। उसका फायदा बताऊं, अभी जो लोग नोट के बारे में परेशान हैं, अब जिन जिन जगह के ऊपर ट्रस्ट रजिस्टर है और उनका ट्रस्ट के नाम का अकाउंट है, उसके अंदर आप बेधड़क जो है रकम डालो, कोई आपकी पकड़ नहीं कर सकता कि भाई ट्रस्ट के अंदर चंदे में आई, ट्रस्ट की पेटी में, मस्जिद की लिल्ला पेटी में, मदरसे की लिल्ला पेटी में आई। आप उसका पंच कियास करके जो है डाल सकते हो, कोई कानून आपको पकड़ नहीं सकता। ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा, नहीं जानते हो तो जान लो, हमारी गुजरात सरकार का ये कानून है, मंदिर आश्रम मस्जिद मदरसे के लिए 33% लाइट बिल में माफी है। नहीं जानते हो तो सुन लो आप, 33% लाइट बिल में माफी है। लेकिन ये किसको मिलेगा? जो रजिस्टर मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रस्तान हो, 1 रुपये का बिल बनता है तो 33 पैसे लेस होकर के वो लाइट बिल आएगा, तो साल भर में हजारों रुपये का फायदा होता है। और आगे चल करके सरकार की कोई चीज आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकती, बहुत सारे नुकसान के जो खतरात है उससे हिफाजत हो जाएगी। इसीलिए हर गांव में ट्रस्टी मुतवल्ली कमिटियों को मैं अदब से दरखास्त करता हूं कि रजिस्ट्रेशन न हो, रजिस्ट्रेशन कराओ, बंधारण उसका बनवाओ, वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो जाओ, ट्रस्ट के नाम का बैंकों में अकाउंट खुलवाओ, हर पैसा जो है कानून के मुताबिक उसका संचालन करो, ऑडिट करवाओ हर साल, और ऑडिट रिपोर्ट चैरिटेबल चैरिटी में या एक वक्फ बोर्ड में हर साल जमा करवाओ, पुराने ट्रस्टी बदले नए आए उसकी नोंद वक्फ बोर्ड में दो, और जो है उसकी जो कानूनी कार्रवाई सब करो, इसमें बिल्कुल कमी मत करो। ये मेरी आपसे बहुत दर्दमंदाना अपील है। अगर इसके अंदर कोई सलाह सूचन की जरूरत है तो मुफ्ती हूं, लेकिन इस लाइन के कानून से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वाकिफियत है। मैं आपकी जो चाहे इस लाइन से मदद कर सकूंगा, जिनको भी इस लाइन से मशवरे की जरूरत हो हम आपकी इस लाइन से भी इंशाल्लाह खिदमत करेंगे। साथ में दूसरी बात, हमारे इलाके में हमारे बाप दादाओं ने, वड़ीलों ने, बुजुर्गों ने हर जगह मस्जिद मदरसे के नामों पर जमीनें वक्फ कर रखी है, तो वो तमाम जमीनों को ट्रस्ट के नाम पे चढ़वाओ। बहुत सी जगह ये है कि वो बेचारे वक्फ करके मर गए लेकिन नाम ट्रांसफर नहीं हुआ, ट्रस्ट के नाम पे चढ़ाया नहीं, अभी तक औलाद के नाम चले आ रहे। तो बहुत सी जगह ऐसा हो रहा है कि औलाद में खियानत आ गई, दादा ने पर दादा ने वक्फ किया था और औलाद की नीयत बिगड़ी, जमीन का भाव बढ़ा ही इसलिए, तो अब वो बेच डालते हैं, वक्फ की हुई जमीनों को बेच के खा जाती है बाद की औलाद। तो उसमें मुतवल्ली भी गुनेगार कि इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। होद्दा लेना तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरे हाथ में होद्दा आवे, लेकिन कुछ नहीं करना खाली होद्दा लेकर के, ये तो जुल्म है। अगर आपको कानून आते नहीं तो होद्दा लिया क्यों, जो जानकार है उनको होद्दा दो। इसीलिए जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ हो चुकी है वो तमाम प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड में चढ़वाओ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद की मेहनत की बरकत से हमारे भारत देश में 2013 का जो नया वक्फ एक्ट बना है वो बहुत गनीमत है, बहुत गनीमत है, बहुत गनीमत है कि उसके अंदर अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो वक्फ की प्रॉपर्टी को कोई खा नहीं सकता, कोई गसब नहीं कर सकता, कोई दबा नहीं सकता। इसीलिए ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो करने का है। हर गांव वाले उसकी चरवड़ चलाओ और मस्जिद, मदरसा, इबादत खाना, कब्रस्तान और उसमें होने वाली प्रॉपर्टी, इमारत सब का रजिस्ट्रेशन करवा लो। ऑडिट पिछले भी अगर बाकी है तो उसको कैसे वाइट क्लियर करने का उसका भी तरीका है, वो सब करवा के क्लियर कट हो जाओ। ये आज के हालात की बहुत अहम और सख्त जरूरत है। दूसरी नसीहत आज के हालात में, भाइयों अपनी जमीनों को मत बेचो अल्लाह के वास्ते, जमीनें मत बेचो। अगर किसी मजबूरी में जमीन बेचने की जरूरत पड़े तो जरूरत के पैसे खर्च करके बाकी के पैसों से छोटी मोटी दूसरी जगह जमीन खरीद लो। अब समझो कि आपके यहां 1.5 करोड़ रुपए विंगा है तो अभी भी बास जगह पर 1.5 लाख रुपए में विंगा मिलता है। यहां बेचो, अपनी जरूरत में लगाओ, बाकी पैसों से दूसरी प्रॉपर्टी खरीदो। हदीस में आता है कि जायदाद को मत बेचो, यानी प्रॉपर्टी जमीन वगैरह को मत बेचो, और बेचो तो उसके बदले में दूसरी प्रॉपर्टी खरीदो। ये हदीस में आया हुआ है। इसलिए जमीन जायदाद को मत बेचो और जरूरत के वक्त बेचे, वारसा वेंचनी के लिए या कर्ज हो गया उसके लिए तो जरूरत का पैसा निकाल करके बाकी पैसों को दूसरी जगह जमीन में इन्वेस्ट कर दो। ये आज के जमाने की बहुत अहम और सख्त जरूरत है। ये खास दूसरा मशवरा आप तमाम लोगों को। और तीसरी नसीहत करके फिर हम दुआ कर लेते हैं। जितने भी हमारे देश में रहने वाले देशवासी भाई हैं, चाहे वो गरीब तबके के हो या ऊंचे तबके के, उनके साथ ऐसा सुलूक करो कि उनके दिलों में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो गुस्सा, नाराजगी, बदगुमानी है वो खत्म हो गए और वो इस्लाम को समझे, मुसलमानों को अच्छा समझे। ऐसा उनके साथ बर्ताव और सुलूक करो। हमारे यहाँ ये जो गरीब कौम के लोग रहते हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, जो बरसों से हमारे यहाँ काम करते, नस्ल की नस्ल से काम करते, उनके साथ भी अच्छा बर्ताव करो, उनको अपने करीब करो, उनके दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत बिठाओ, उनको अल्लाह की पहचान कराओ, इस्लामी अखलाक उनके साथ बर्ताओ। ये आज के हालात की बहुत अहम जरूरत है। इस हालात के अंदर हम कट कट के रहे तो बहुत बड़े नुकसानात के अंदेशे हैं, अल्लाह उससे हिफाजत फरमाए। इस वक्त के ऊपर दीन की बहुत बड़ी खिदमत ये कि आप किसी एक नाराज नॉन मुस्लिम के दिल में से नाराजगी को दूर करके उसके दिल में इस्लाम और मुसलमान की मोहब्बत बिठा देवे। ये आज के हालात की बहुत बड़ी दीन की खिदमत होगी। अल्लाह ताला आज की इस मजलिस को बे इंतहा कबूल फरमाए, हमारी दीनी बहनों के आने को कबूल फरमाए, भाइयों के आने को कबूल फरमाए, नौजवान हजरात और उलमाए दीन जिन्होंने आज की इस मजलिस की फिक्र की, कोशिश की, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। भाइयों हालात के एतबार से सलातुल हाजा पढ़ पढ़ के इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत की दुआएं करो, सदका निकालो, यासीन शरीफ के ख़त्म रखो, इस्तिगफार करो पूरे आलम के अहले ईमान के लिए, इस मुल्क के अहले ईमान के लिए, मुल्क के तमाम इंसानों के लिए, जितने भी परेशान, दुखी, मजलूम, बेसहारा, सब के लिए दुआ करो और जिसकी जो हो सके वो खिदमत और सेवा करो। इंशाल्लाह ये चीज दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत के अंदर भी काम आएगी। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا درود شریف پڑھ لو، دعا کرتے ہیں. الحمد لله رب العالمين
والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. پوری دنیا میں جو بھی پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. جو جیلوں میں ہے اللہ ان کو رہائی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. اجڑوں ہوؤں کو آباد فرماؤ. اے اللہ، قیامت تک اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو ترقیات کے ساتھ زندہ سلامت قائم دائم باقی فرماؤ. ہر نوع کے فتنوں اور فتنوں سے حفاظت فرماؤ. اے اللہ، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام فرما دیجئے. اے اللہ، امن و امان، عدل و انصاف کا ماحول قائم فرماؤ. اس ملک میں رہنے والی قوموں میں آپس میں بھائی چارگی، رواداری، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام عطا فرما. ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرماؤ. اے اللہ، فتنوں کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، دشمنوں کی دشمناوٹ سے، مکاروں کے مکر سے، پورے ملک کی، پورے عالم کی، اسلام کی، مسلمانوں کی، کمزوروں کی، ہر ایک کی حفاظت فرما لیجیے. ہدایت کی ہواؤں کو چلا دیجیے. ہر انسان اور ہر جن کو ایمان عطا فرماؤ. مدارس کی، مساجد کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، ہر چیز کی، اسلامی شاعر کی حفاظت فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ علی النبی الکریم. آمین 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 یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائیو، ایک بات سن لو. بہت سے لوگ ہم کو پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ فیصلہ کب آنے والا ہے، تو سنو بات کو. ابھی تو سرکار نے جو ہے اپنی ایفیڈیوٹ کورٹ میں داخل کی. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنی ایفیڈیوٹ داخل کی، جواب دیا. جمعیت علماء ہند نے اپنا جواب کورٹ کو دیا. ابھی تو صرف جواب کورٹ میں داخل ہوئے. اس کے بعد تاریخ پڑے گی اور دونوں طرف کے وکیلوں کی بحث ہوگی. پھر اس کے بعد فیصلے کا نمبر آتا ہے. ابھی تو تاریخ بحث اور چرچا کی نہیں پڑی، تو فیصلے کی تاریخ کا تو ابھی کوئی یعنی کوئی وقت ہی معلوم نہیں ہے. اسی لیے ایسی سب افواہوں کے چکر میں مت پڑو. اس تاریخ کو فیصلہ، اس تاریخ کو فیصلہ، جب ہوگا ہم آپ کو اس کی خبر دیں گے. ابھی اس کی ایسی کوئی تاریخ ہے ہی نہیں. مسلم پرسنل لا کیا چیز ہے؟ گجراتی میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے یہ کتاب لکھی ہے. اس کو لے جاؤ، پڑھو، اس کو خوب پھیلاؤ. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.